संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान।
समय सार परमागम की छठवीं सातवीं गाथा के आधार पर दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है कि नहीं है, इसकी चर्चा अपने विगत एक सप्ताह से चल रही है। अब आज अपन 77 पेज 77 पेज पर जो प्रवचन सार की 99वीं गाथा का आधार लेकर के बात कही जा रही है, वो बहुत बारीक बात है और उस गढ़ में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। देखो, प्रवचन सार की 99वीं गाथा की आचार्य अमृतचंद के तत्व प्रदीप का नामक टीका में प्रदेशों की अखंडता को, वस्तु की समग्रता और परिणामों की अखंडता को वृत्ति की समग्रता कहा है तथा दोनों के व्यतिरेकों को क्रमशः प्रदेश और परिणाम कहकर प्रदेशों के क्रम का कारण, यदि प्रदेशों के क्रम का कारण लिखा ना, इसकी जगह आप लिख लो विस्तार क्रम का कारण, विस्तार क्रम का कारण नोट कर लो जिसको करना हो, विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है और प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का परस्पर व्यतिरेक है, ऐसा कहा है। उक्त तथ्य की गहराई में जाने से एक बात स्पष्ट होती है कि यदि विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का व्यतिरेक है और प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का व्यतिरेक है, तो प्रदेशों और परिणामों का अन्वय अनुसूति से रचित विस्तार और प्रवाह है, क्षेत्र और काल की समग्रता का कारण होना चाहिए। इस प्रकार यह सहज ही फलित होता है कि वस्तु की अखंडता, वस्तु की समग्रता क्षेत्र की अखंडता है और वृत्ति की समग्रता काल की अखंडता है। तात्पर्य यह है कि प्रदेशों में सर्वत्र अनुसूति से रचित एक प्रवाह, गलत है ये, जरा मैं जो सुधारता हूं वैसा उसे सुधारो जिसे सुधारना हो। अनुसूति से रचित प्रवाह क्षेत्र की अखंडता है और परिणामों में परस्पर अनुसूति से रचित प्रवाह काल की अखंडता है। क्या एक पंक्ति छूटी हुई है संजीव, नोट करना ये और अगले एडिशन में सुधारना, क्या इसमें वो लगाना, वो दूसरा जो एडिशन है उसमें सही है क्या, देखना एक लाइन छूटी है पूरी की पूरी इसमें। हाँ वो देख लेना, उसमें वो बात करें हम कर लेंगे, आप सबको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए क्या चक्कर है, इसमें हर शब्द जो है वो व्याख्या की अपेक्षा रखता है। ये 99वीं गाथा है, 99 का चक्कर है जिसका कभी अंत नहीं आता है। ये वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल और भावमय है, तो वस्तु में एक होता है विस्तार क्रम और एक होता है प्रवाह क्रम, और विस्तार क्रम होता है क्षेत्र की अपेक्षा और प्रवाह क्रम होता है काल की अपेक्षा। पहले तो ये समझें कि ये प्रकरण प्रवचन सार में क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के अर्थ में है, वो वस्तु का स्वरूप बताया है और अपन ने क्रमबद्ध पर्याय की किताब में ये कोटेशन क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए दिया है। उसमें ये कहना चाहते हैं कैसे आत्मा में असंख्यात प्रदेश है ना, अब उन असंख्यात प्रदेशों को अपन पूरा एक के ऊपर दूसरा नहीं रहे ऐसा बिछा दें तो लोकालोक में फैल जाएगा वो, और जो केवली समुद्र घाट में होता है लोकपूर्ण दशा होती है ना, लोकाकाश के एक प्रदेश पर आत्मा का एक प्रदेश रहे, बस किसी भी प्रदेश में दो प्रदेश नहीं रहे, तो इतना फैल सकता है। इसलिए लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही एक आत्मा के प्रदेश हैं। अब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये अपने आत्मा को एक तरफ रख दो, अब लोकाकाश को पकड़ लो, जिसे समझ में जल्दी आएगा। तो जो लोकाकाश के जो प्रदेश हैं, जो एरिया है, तो ये जयपुर वाले जो प्रदेश हैं इनको दिल्ली ले जाया जा सकता है, और तो दिल्ली वाले प्रदेशों को यहां ले आए, यानी पूरे लोकाकाश में नीचे से ऊपर तक, नीचे से अगल बगल में तक, तीन लोक में एक एक प्रदेश का स्थान अनादिकाल से निक्की है और अनंत काल तक वो वहीं रहेगा। एक इंच भी, एक प्रदेश भी यहां वहां हिलेगा नहीं। एक पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट, वो जो प्रदेश है तो उसके चारों तरफ, चारों तरफ क्या, छह तरफ कौन कौन दूसरा प्रदेश है वो भी नक्की है, समझे ना। परमाणु की रचना मालूम कैसी है, षटकोण है, और षटकोण रचना होने से जगह खाली नहीं रहती है। जब दो परमाणु मिले ऐसे आपस में ना, तो बीच में स्पेस नहीं रहता है, तो उसकी जगह चारों तरफ छह परमाणु उससे चेंट सकते हैं, चारों तरफ मिलाएंगे तो एक ऐसे आकाश आत्मा के प्रदेश की समझिए, तो उसके चारों तरफ छह प्रदेश और चेंटे हुए हैं जैसे, तो वो प्रदेश अनादि काल से अनंत काल तक उसी पोजीशन में रहेंगे, चाहे तो वो लोकाकाश में फैल जाए तब भी, और चाहे वो समिट जाए तब भी, एक चिंटी के शरीर में आ जाए तब भी। ये रूमाल है ना, तो रूमाल के पास में जो जो ताना है वो ताना, उसके बगल में दूसरा ताना है, एक बाना है उसके बगल में दूसरा बाना है, फिर रूमाल को चाहे मैं ऐसा करूं कैसा ही करूं, लेकिन उनका क्रम नहीं बदलेगा, जिसके बाद जो है वो ही रहेगा, उसे बोलते विस्तार क्रम। विस्तार क्रम क्योंकि वो अगल बगल में है, काल की अपेक्षा नहीं है, आगे पीछे नहीं है, अगल बगल में है ना, इसलिए बोलते विस्तार क्रम। और अगल बगल तो ऊपर नीचे भी हो सकती है, और इधर ऐसी भी हो सकती है, और ऐसी भी हो सकती है। तो जैसे आकाश के उन प्रदेशों में वो जो व्यवस्थित क्रम है, जो अनादि और अनंत काल में कभी नहीं बदला जा सकता है, वैसे ही वो आत्मा के प्रदेश हमने ऐसे फैला दिए ना लोकाकाश में, तो उनमें भी एक एक प्रदेश के बाद दूसरे प्रदेश का क्रम है, और उन्हें भी कभी नहीं बदला जा सकता। ऐसा है ना, ये समझा रहे हैं कि विस्तार क्रम की अपेक्षा प्रवाह क्रम को समझा रहे हैं। तो वो कहते जैसे वो प्रदेशों का क्रम है, प्रदेश को भी पर्यायार्थक न्याय का विषय होने से पर्याय कहते हैं, ये मैं समझा चुका हूं, बार बार उसको बात नहीं करूंगा। तो जैसे वो प्रदेशों के क्रम को नहीं बदला जा सकता है, दिल्ली को जयपुर नहीं लाया जा सकता, जयपुर को दिल्ली नहीं ले जाया जा सकता है, ऐसे ही काल, ऐसे कहते पर्यायों के भी, जैसे लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक आत्मा का प्रदेश स्थित हो जाता है ना, तो अनादि से लेकर अनंत काल तक जितने समय है, प्रत्येक द्रव्य का एक एक पर्याय एक एक समय में खचित है, और उसका आगे के पीछे का उसमें क्रम व्यवस्थित है, तो एक भी पर्याय को वहां से हटा के आगे पीछे नहीं लिया जाता है, कल की पर्याय को आज ले आए और आज की पर्याय को कल ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये विस्तार क्रम से प्रवाह क्रम को उनने सिद्ध किया। यदि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, यदि हमने समझ लीजिए कि एक किताब है और इसके हम इस पेज को इधर लाना चाहते हैं और इसको यहां ले जाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, पेज को फाड़ के यहां लाना पड़ेगा, यहां का पेज फाड़ के वहां ले जाना पड़ेगा, तो ये किताब फिर फट जाएगी, अखंड नहीं रहेगी। तो द्रव्य के प्रदेश को एक जगह से दूसरी जगह हटाना पड़े तो प्रदेश के टुकड़े करना पड़ेंगे, अखंड हो जिसके खंड नहीं हो सके, समझने के लिए हम खंड करें लेकिन वास्तविक कभी उसे तोड़ नहीं सकते, खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए वो खंड किए नहीं जा सकते, इसलिए उसको बदला नहीं जा सकता। तो जैसे विस्तार के क्रम में ये नियम है, ऐसा ही नियम प्रवाह के क्रम में भी है, कि एक पर्याय को मान ली मेरी सिद्ध पर्याय है, अब मैं उसे अभी जल्दी लाना चाहता हूँ, है तो मान लो 1,00,000 वर्ष बाद। अब मैं कहता हूँ मैं तो अभी ले आऊंगा अपना पुरुषार्थ करके, तो सिद्ध पर्याय को यहां लाऊंगा तो वहां जहां से सिद्ध पर्याय में निकालूंगा जो सुकाल में थी वहां से एक टुकड़ा एक कट लग जाएगा, और जहां जहां घुसेड़ूंगा वहां एक कट लगाना पड़ेगा। तो आत्मा की अनादि अनंतता खंडित हो जाएगी, कट लग जाएगा उसमें, इसलिए वो वस्तु में, और वो काल से कट कट कभी लगता नहीं है, इसलिए कहते हैं इस पर्याय को बदला नहीं जा सकता। क्यों, ठीक है ना? आप इसमें कंजूसी मत करना, मुझे 3 दिन लगेंगे तो मैं 3 दिन लगाऊंगा, लेकिन ये समझना ये बहुत मार्मिक चीज है, इससे क्रमबद्ध पर्याय भी असली क्रमबद्ध पर्याय से समझ में आती है। ये अमरचंद्र ने किया है ये प्रयोग कि हमने कहीं से भी एक पर्याय को पलट के जो बाद में आने वाली है पहले लाने की कोशिश की तो 2 कट लगेंगे, और सिद्ध पर्याय के साथ तो एक तकलीफ और है कि उस सिद्ध पर्याय एक दफे आ गई तो उसके बाद फिर संसार पर्याय आ नहीं सकती, और अभी यहां से जो जितने काल तक संसार पर्याय बाकी थी तो वे तो फिर खत्म ही, उनको तो खत्म ही करना पड़ेगा, उतना द्रव्य खत्म ही हो जाएगा है? और उतना द्रव्य खंडित हो जाएगा तो उतनी लंबाई कम हो जाएगी, 9 मीटर की धोती है और 1 मीटर बीच में से निकाल दिया तो 8 मीटर की रह जाएगी, तो अनादि अनंत नहीं रहेगा द्रव्य। अब इसका संबंध अपने इससे कहां संबंध आता है दृष्टि के विषय से? अब अभी वो करें, पहले तो मैं एक पॉइंट समझ लें, माने क्षेत्र की अखंडता और काल की अखंडता किसे कहते हैं इसे अपन समझें। ऐसे ही गुण की अखंडता भी है, अनंत गुण है, और वो जो 47 शक्तियों में गुरुदेव श्री फरमाते हैं एक का रूप दूसरे में है, वो उसकी अखंडता का सबसे बड़ा हेतु है, नहीं तो गुणों को बिखरते अलग होने में देर नहीं लगे। अब उसका मैं विस्तार से वर्णन जब करूंगा तो 47 शक्तियों पर कुछ लिखूंगा या बोलूंगा, उनमें बीच में वो नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण मिला नहीं हो, अखंड नहीं हो, तो ज्ञान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो ज्ञान गधे के सींग जैसा हो जाएगा। ये रूप की महिमा है, और यदि अस्तित्व गुण में ज्ञान गुण का रूप नहीं हो तो अस्तित्व गुण जाने ही नहीं जा सकता, जाने ही नहीं जा सकेगा। वो समझ गए ना हो गया? तो पूरा आत्मा ज्ञानी है ना, तो पूरा आत्मा ज्ञानी कैसे होगा? जब ज्ञान गुण अनंत गुणों में व्याप्त नहीं होगा तो वह पूरा आत्मा ज्ञानी कैसे होगा? अकेला ज्ञान गुण ज्ञानी होगा, बाकी अज्ञान में होंगे, ज्ञान गुण चेतन होगा बाकी गुण अचेतन होंगे, क्योंकि ज्ञान दर्शन को चेतना कहते हैं, तो चेतना बाकी पूरा द्रव्य चेतन नहीं होगा, तो 2 द्रव्य होंगे, गुण होंगे चेतन और बाकी अनंत गुण होंगे अचेतन, इसलिए तो गुण भेद इष्ट नहीं है। यदि वो भेद को गुण भेद को सर्वथा स्वीकार करते हैं तो बाकी के गुण अचेतन हो जाते हैं, क्योंकि जो चेतनता तो उसमें से अलग हो गई, चेतन गुण अलग हो गया माने क्या, माने चेतनता अलग हो गई। चीनी में से मिठास निकल जाए तो फिर क्या होगा चीनी का? क्यों साहब, खारी हो जाएगी? जब उसका रसोई गुण निकल जाएगा तो न मीठी होगी न खारी होगी, आकाश जैसी होगी, कुछ नहीं होगी, कोई रस होगा ही नहीं। तो वो गुण की अखंडता है, मैं उसकी बात अभी नहीं करता हूं। अमरचंद्र ने यहां काल की अखंडता को समझाने के लिए प्रदेश की अखंडता का उदाहरण दिया, क्षेत्र की अखंडता का उदाहरण दिया, ये है उदाहरण और वो है सिद्धांत समझाने को। देखो अपन तो उदाहरण समझे, कहानी किस्सा सुनाओ तो उन्हें उदाहरण कहते हैं, ऐसा समझते कोई कहानी किस्सा सुना जाए रिक्शे वाला है वो उदाहरण हो गया, क्यों ऐसा नहीं। और उदाहरण का एक नियम है कि उदाहरण सरल होना चाहिए और सिद्धांत कठिन होना चाहिए, और उदाहरण लोक प्रसिद्ध होना चाहिए और सिद्धांत अप्रसिद्ध होना चाहिए, और उदाहरण स्थूल होना चाहिए और सिद्धांत सूक्ष्म होना चाहिए। ये तीन बातें क्यों है? क्योंकि उदाहरण तो समझाने के लिए दिया जाता है, और के उदाहरण को भी समझाने में पसीना छूटे सूक्ष्म हुए तो सिद्धांत तो एक तरफ रखा रह जाएगा, उदाहरण को समझाना कठिन हो जाएगा, है ना? यदि कठिन होगा तो उदाहरण को समझाना कठिन हो जाएगा, इसलिए उदाहरण होना चाहिए सरल। उदाहरण लोक प्रसिद्ध होना चाहिए, ऐसा लगा धर्मी वादी और प्रतिवादी दोनों को मान्य होना चाहिए, वो उदाहरण है, और जो अकेला वादी को मान्य और प्रतिवादी को मान्य नहीं है वो सिद्धांत है। क्या मतलब? क्योंकि वो वादी प्रतिवादी को वो उदाहरण मान्य है ना लोक प्रसिद्ध होने से, तो उसी के सारे तो सिद्धांत मानेगा, वो उदाहरण नहीं माने सिद्धात्मा तो उदाहरण ही गलत है, ये बात ऐसी होती नहीं है। हमका जैसे माँ जैसे अपने गाय बछड़े को प्यार करती है, वैसे ही अपने माँ का अपने धर्मी धर्मात्मा से हमें प्रेम होना चाहिए। झूठी बात है, गाय बछड़े को प्यार करती नहीं है तो हो गया काम खत्म। अब धर्मात्माओं से कैसा प्रेम होना चाहिए इसकी बात आई कहां? कि गाय बछड़े से प्यार करती है ये सामने वाले को मान्य हो तो फिर यह बात समझाई जा सकती है कि ऐसा प्रेम होना चाहिए धर्मात्मा जीवों से आपस में। अब वही में शंका खड़ी हो गई तो विधान का मुद्दा विधानी बहस का मुद्दा बन जाएगा, सिद्धांत एक तरफ रखा जाएगा, इसलिए वो वादी प्रतिवादी दोनों को मान्य होना चाहिए। अम्बे चंद्राचार्य ने ये उदाहरण क्यों चुना? क्योंकि ये सरल है। कैसे सरल क्यों है? कि प्रदेशों के विस्तार क्रम को सब समझते हैं, मतलब जो जैन धर्म जानते हैं सबका मतलब वो जिनको ये समझाना है वो, और सरल इस अर्थ में है कि उसमें किसी को पर्याय का क्रम पलटने की अपनी इच्छा है ना कि जल्दी सिद्ध पर्याय आ जाए, ऐसे यहाँ का प्रदेश को निकाल के यहाँ ले जाओ ऐसी किसी को आज तक इच्छा हुई नहीं है। जयपुर को दिल्ली ले जाए कभी किसी को विकल्प आया? क्यों अजित बाबू अच्छा रहेगा दिल्ली राजधानी के पास हो जाएंगे, पर ऐसा करो अलवर को ट्रांसफर जयपुर में कर दो, जयपुर को अलवर कर दो। एक तो कर सकते हैं जयपुर का नाम अलवर रख दें, अलवर का नाम जयपुर, तुम्हारे हाथ में नाम रखना है पर वो कर सकते हो तुम। तो दिल्ली के पास एक न्यू जयपुर बसा दो, ये तुम्हारे हाथ में है, ये नहीं है तो उसके बारे में किसी को आज तक विकल्प नहीं हुआ। तो वे कह रहे हैं जब क्षेत्र के बारे में विकल्प नहीं हुआ तो पर्याय के बारे में क्यों विकल्प होता है? काल की अखंडता है, वो पर्याय को बदलने का विकल्प क्यों होता है? इसलिए होता है कि क्षेत्र से कोई कहीं हो उससे कोई बिगाड़ सुधार नहीं है। ये आत्मा के प्रदेश जो इधर माथे के पास है अभी और पैर के पास है, ये माथे के पैर से चेंट आ जाए इधर तो कोई बिगाड़ सुधार नहीं है, तो सिर में दर्द शुरू नहीं हो जाएगा। उस पैर के प्रदेश सिर में आ जाए तो सिर का दर्द मिट नहीं जाएगा, क्यों? उससे कोई बिगाड़ सुधार नहीं है, इसलिए हमें उससे बदलने में फर्क नहीं है। और ये चूंकि पर्याय में बिगाड़ सुधार होता है, ये दुख रूप पर्याय है सुख रूप पर्याय है, इसलिए हमें बदला बदली करने की इच्छा होती है। तो ये हमारा पर्याय के बारे में जो हमारा ज्ञान है कि उसे बदला जा सकता है, क्योंकि वो बदलती है, अपन कहते हैं ना जो बदलती है उसे बदला जा सकता है, इसे खरीदा जा सकता है क्योंकि ये बिकाऊ है, जो बिकाऊ नहीं है उसे खरीदा नहीं जा सकता। प्रदेश बिकाऊ नहीं है उसे खरीदा नहीं जा सकता, पर्याय बिकाऊ है तो पलटती है तो पहले हम भी पलटेंगे, ये तुम पलट नहीं है तो हम ही पलटेंगे। अब वो कहते मैं तो पलटेगा ही नहीं, वहां तो क्षेत्र तो पलटेगा ही नहीं, तो हम भी कहते हमको माथा खराब हो, हम काय को भी शक्ति करते। इसलिए उन्होंने विस्तार क्रम से प्रवाह क्रम समझाया। क्या विस्तार क्रम माने? क्षेत्र का क्रम। तो कहते विस्तार माने क्षेत्र, फैलाव। तो ये जो फैलाव है इसमें एक सुनिश्चित क्रम है, हम इस रूमाल की घड़ी करेंगे, इससे रूमाल की घड़ी करने से प्रदेशों के क्रम में कोई फर्क नहीं आएगा, जिसके बाद जो है वो ही रहेगा। ऐसे आत्मा को चिंती के शरीर में जाना पड़े तो भी उनके प्रदेशों के क्रम में कोई फर्क नहीं आएगा। तो जैसे विस्तार के क्रम को क्षेत्र कहते हैं, ऐसे ही प्रवाह के क्रम को काल कहते हैं। जैसे क्षेत्र से भगवान आत्मा अखंड है, ऐसे ही काल से भी भगवान आत्मा अखंड है। यदि यह बात हमारी समझ में आ जाए कि काल से भगवान आत्मा अखंड है, तो फिर हम पर्याय को पलटने की बात सोचे ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई पलटाव हो ही नहीं सकता। तो हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, फिर बहुत झगड़ा है कि बस उस दिन ही पुरुषार्थ प्रकट होगा असली। अभी तुम्हारा पुरुषार्थ है कहां जिसका कुछ होना है, अभी तो पुरुषार्थ हीनता है, ओंधा पुरुषार्थ है, नरक निगोद में डालने वाला संसार है, संसार में घुमाने वाला पुरुषार्थ है। असली धर्म पुरुषार्थ तो उस दिन प्रकट होगा कि जिस दिन तू ये स्वीकार करेगा, क्या कि काल अखंड है और उसमें दो चिन्ह। अभी जो यहां दृष्टि का विषय चल रहा है, यहां वो काल की अखंडता है, उस ये मतलब हमें हमारे परिवर्तन का विकल्प टूट जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां तो ये समझाना चाहते हैं, क्यों देखो कि जैसे प्रदेशों की अखंडता वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, जिसे बोलते हैं विस्तार क्रम। प्रदेशों की जो अखंडता है वो है द्रव्यार्थिक न्याय का विषय, और उनके एक एक प्रदेश वे तो अखंड है, अनादि अनंत आड़े, लेकिन हमारे ज्ञान के द्वारा उनको अलग अलग जाना जा सकता है, यदि और उनको गिना जा सकता नहीं होता तो असंख्य है, अनंत नहीं है, ये कैसे कहा। तो उनमें कुछ ऐसा वो भी है बीच में, जब हमने असंख्य की संख्या नक्की की तो वे जुदे जुदे हैं, माने जुदाई भी है, जुदे हो नहीं सकते हैं लेकिन जुदे हैं। यही दो पर्याय जुदी हो नहीं सकती हैं लेकिन जुदी हैं, दो गुण जुदे हो नहीं सकते हैं पर जुदे हैं। तो जुदे हो नहीं सकते हैं उसका नाम द्रव्य है, और जुदे हैं उसका नाम पर्याय है, गुण भी प्रदेश भी और काल का खंड भी। पर उसे पर्याय क्यों नहीं कहता मैं, क्योंकि पर्याय दो दो नाम हो रहे, एक पर्यायिक नहीं के उसे पर्याय कहते हैं, वो एक वो द्विगुण पर्याय वाली पर्याय, इसलिए मैं उसे बार बार काल की अखंडता कहता हूं, काल का खंड। तो काल देखो क्षेत्र की जो अखंडता है, असंख्य प्रदेशी, इस क्षेत्र प्रदेशी जब बोलते हैं तो विशेषण बन गया प्रदेश, असंख्य प्रदेशी तो आत्मा मन एक वस्तु अखंड वस्तु की तरफ जाता है, और असंख्य प्रदेश तो ये भेद की तरफ जाता है। तो भगवान आत्मा असंख्य प्रदेश नहीं है, असंख्य प्रदेशी है। भगवान आत्मा अनंत गुण नहीं है, अनंत गुणमय है, अनंत गुणवान है। समझ जाए ना आपकी, ना ये है निश्चय व्यवहार का धर्म, इतने समय निश्चय होता है, इतने समय व्यवहार होता। अब वो देखो उस क्षेत्र की अखंडता, यदि वो असंख्य अलग अलग प्रदेश ख्याल में आए अनुभव में, तो आत्मा का अनुभव होगा या विकल्प की उत्पत्ति होगी। वे अनंत गुण अलग अलग ख्याल में आए तो आत्मा का अनुभव होगा या विकल्प की उत्पत्ति होगी। अलग अलग पर्याय ख्याल में आए तो आत्मा का अनुभव होगा या विकल्प की उत्पत्ति होगी। तो कहते हैं ना तो क्षेत्र संबंधी विकल्प भेद का विकल्प खड़ा हो, ना काल संबंधी भेद का विकल्प खड़ा हो, ना द्रव्य संबंधी भेद का विकल्प खड़ा हो, ना भाव संबंधी विकल्प का भेद खड़ा हो, तो वो अनुभूति का काल है, वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, वो दृष्टि का विषय है। देखो अभी पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, एक दफे तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया ना, और वो सुधार करा दिया है, वो भी आप देखना प्रवचन सार की 99वीं गाथा की आचार्य अमृतचंद कृत तत्व प्रदीप का नामक टीका में प्रदेशों की अखंडता को वस्तु की समग्रता नाम दिया है। वस्तु की समग्रता देखो और परिणामों की अखंडता को वृत्ति की समग्रता नाम दिया है। ये नाम आपको याद रखना पड़ेंगे, एक वस्तु की समग्रता और एक वृत्ति की समग्रता। तो प्रदेशों का अखंडपन है वो वस्तु की समग्रता है, समग्रता माने अखंडता, समग्रता माने संपूर्णपन। ये मूल शब्द है उसमें समग्र आचार्य का, मैंने अब मेरी तरफ से कोई पलटा पलटी नहीं की। जब कह रहे समग्र माने अखंड तो अखंड ही लिख देते ना, मैं क्या लिख दूं, ये तो आचार्य स्त्री की बिल्कुल मूल शब्द है। अब देखिए वस्तु की समग्र तथा दोनों के व्यतिरेकों को क्रमशः प्रदेश और परिणाम कहकर विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है और प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का परस्पर व्यतिरेक है ऐसा कहा है। अब देखिए वो समग्रता है वो है द्रव्य, प्रवाह क्रम की समग्रता वो है द्रव्य, और अब कहते हैं समग्रता का व्यतिरेक। ये व्यतिरेक क्या होता है, अब बहुत आता होगा शास्त्र में पर आपकी समझ में नहीं आता। व्यतिरेक माने उसका उल्टा, अखंडता का उल्टा क्या होगा, खंड। अखंडता का उल्टा खंड होगा ना। तो देखो प्रदेशों की अखंडता जो वस्तु की समग्रता है तो वो इन दोनों का व्यतिरेक माने वस्तु की समग्रता का व्यतिरेक वो प्रदेश है और परिणामों की समग्रता का व्यतिरेक वो पर्याय। ये जो पर्याय है वो काल वाली पर्याय है और जो पर्यार्थिक नय का विषय रूप पर्याय है वो तो चारों की जाएगी। अब ये अलग अलग समझना महेंद्र, समझना बुद्धि का खाना बिल्कुल अलग अलग करना पड़ेगा। मोबाइल चंद जी बहुत व्यायाम है, क्या देखो फिर पढ़ता हूं ना। देखो इन दो तथा दोनों के व्यतिरेकों को क्रमशः प्रदेश, ये प्रदेश की परिभाषा है, वस्तु की समग्रता का व्यतिरेक उसे प्रदेश कहते हैं और काल की समग्रता का व्यतिरेक उसे पर्याय कहते हैं। क्यों, वो तो पर्यायार्थिक नय का विषय सो पर्याय, क्योंकि उसमें तो प्रदेशों का व्यतिरेक भी आ जाएगा और गुणों का व्यतिरेक भी आ जाएगा और सारे व्यतिरेकों का अभाव हो जाएगा और इसमें तो अकेले काल का व्यतिरेक का अभाव है, समझ गए ना। दिक्कत क्या होती है और उसे भी पर्याय कहते हैं, तो हम उस यहां कौन सी पर्याय लेना और वहां कौन सी पर्याय लेना वो नहीं पकड़ पाते। मैं एक बात आपसे कहता हूं कि ये तो गलती मैंने यहां अभी बैठ के निकाली एक मिनट में, इतनी 10,000-20,000 छप गई, किसी का मेरे पास एक पत्र नहीं आया कि साहब यहां एक ऑनलाइन छुट्टी लगती है। इसका मतलब यह है कि उनने इतनी गहराई से पढ़ा नहीं, पढ़ा तो उनकी समझ में कुछ आया। मैंने ये देखा नहीं कि वो लेन क्या छुट्टी होगी, वो लेन छुट्टी है तो उसे मैंने बड़ी लिख ली अभी लाल लाल लिखी नहीं देखा, क्योंकि वो भाव मेरे ख्याल में है भाई क्या क्या भाव इसमें से छूट गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी समझ में नहीं आया तो आपके स्वाध्याय की गहराई में कमजोरी है, आप एक दफे गंभीरता से उस बात पर विचार करें, इसके लिए कहता हूं। ये बात समझ में आने के लिए जितनी बुद्धि की तीक्ष्णता से स्वाध्याय चाहिए उतना नहीं हुआ है, जितना गुड़ डलना चाहिए उतना नहीं डला है, जितना गुड़ डला है उतना मीठा हुआ है। अब क्या कह रहे हैं कि काल पर्याय की परिभाषा दिए ना, इन दोनों का कहेंगे वितरेक ऊपर है तथा दोनों के वितरेकों को क्रमशः प्रदेश और परिणाम कहकर फिर प्रदेशों के क्रम का, प्रदेशों के माने विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर वितरेक है। ये भी विस्तार क्रम शब्द ही होना चाहिए ऊपर, प्रदेशों का क्रम शब्द ठीक नहीं है। विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का वितरेक है, वो प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का वितरेक है, ऐसा कहा है। उक्त तथ्य की गहराई में जाने से एक बात स्पष्ट होती है कि यदि विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का वितरेक है और प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का वितरेक है, तो प्रदेशों और परिणामों की अन्वय, वितरेक का विरुद्ध होता है अन्वय, अन्वय माने अनुस्थिति से रचित प्रवाह, अनुस्थिति से रचित विस्तार प्रदेशों की अपेक्षा और अनुस्थिति से रचित देखो यहां से पढ़ो, प्रदेशों और परिणामों का अनुस्थिति से रचित विस्तार और प्रवाह, ये है ना, इसको मैं बनाता हूं। प्रदेशों का अनुस्थिति, प्रदेशों का अन्वय अनुस्थिति से रचित विस्तार और परिणामों का अन्वय माने अनुस्थिति से रचित प्रवाह, समझ गए, बना लिए दोनों, ये साधारण भाषा का ज्ञान होगा वो बना सकता है वाक्यों की गठन कैसे, कि दो वाक्य कैसे मिलाए जाते हैं और कैसे अलग किए जाते हैं, ये काम उतना ही कठिन है कि दाल में नमक डाल दो फिर उसे मिला के अलग करो, कहते देखो क्या होगा, तो वो विस्तार क्रम इस क्षेत्र और काल की समग्रता माने अखंडता का कारण होना चाहिए, ये निषिद्ध कर दिया कि जब उनका विस्तार क्रम क्षेत्र के वितरेक उसमें कारण है भिन्नता, तो क्षेत्रों का अन्वय उनकी अखंडता में कारण होना चाहिए। तो वो जो दस नए हैं अन्वय द्रव्यार्थिक नए, दस दस नयों में है ना एक अन्वय द्रव्यार्थिक नए, वो अन्वय द्रव्यार्थिक नय का विषय ये अन्वय है। जब मैंने वो लिखा थे दस द्रव्यार्थिक नयों का विषय, तो अन्वय द्रव्यार्थिक समझने में मुझे बहुत पसीना छूटा और विकल्प बना ही रहा, तो मैं गुरुदेव के पास गया था और उन्होंने गुरुदेव जी से पूछा था कि महाराज मेरे को मैं बहुत कोशिश की लेकिन इसका पूरा भाव ख्याल में नहीं आता है कि अन्वय द्रव्यार्थिक का अर्थ क्या है, तो उन्होंने कह दिया कि अब भी मैं इस उम्र में माथा नहीं मारता। तो अन्वय द्रव्यार्थ अन्वय को द्रव्यार्थिक नय का विषय क्यों कहा, कि वितरेक तो परार्थिक नय का विषय बनते हैं, तो अन्वय द्रव्यार्थिक नय का विषय बनते हैं, तो अन्वय अन्वय प्रदेशों का अन्वय और पर्यायों का अन्वय, तो पर्यायों का अन्वय वो काल की अखंडता है, पर्यायों का वितरेक शामिल नहीं, परिणाम तो वितरेक ही का नाम है, तो काल का वितरेक माने पर्याय परिणाम और काल का अन्वय माने द्रिव्य, तो काल का अन्वय शामिल है द्रिव्य के विषय में, काल का वितरेक शामिल नहीं, अन्वय शामिल है, क्षेत्र का वितरेक शामिल नहीं है, भाव का अन्वय शामिल है, भाव का वितरेक शामिल नहीं है, क्या कैसे सब ऊपर से तो नहीं जा रहा है आदिश जी ऐसे नहीं आए, ए, 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 ले जाना कैसेट, वो पहले दिन से सुनना, ख्याल में ना यहां तक के पूरे तब ये समझ में आएगा, समझ ना हो तो अकेले हाजिरी लगाने से काम नहीं चलता है कि सिविर में हाजिरी लगवा दी आद्य पांत जम के समझना पड़ेगा तो समझ के आएगा, जब नेता हो जाते हैं ना तो फिर हाजिरी लगाने का धंधा शुरू हो जाता है, नेताओं का कार्यकर्ताओं का कल्याण होना बहुत कठिन है, असंभव नहीं है, क्योंकि वो चित्र की समग्रता नहीं होती है उनकी, उनका चित्त का अन्वय नहीं होता है, चित्त हमेशा वितरेकों में ही उलझ जाता रहता है, क्यों वीरेंद्र कुमार जी ठीक है ना, चित्त विभक्त हो जाता है, एक सही घटना बोलता हूं कि मैं प्रचन करता था, एक मेरे श्रोता थे वो निरंतर भजन बोला करते थे बारामासी, मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा लेकिन बिल्कुल बारामासी बोलते रहते थे, और वो अपनी किताब डायरी साथ में रखते थे और उनको ये विकल्प रहता था कि भाई पंडित जी का प्रवचन खत्म हो और मैं फटाफट शुरू करूं, क्यों कि कहीं दूसरा शुरू नहीं कर दे, नहीं तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कार्यक्रम बनाया बनाया है ऐसे कि आपने कार्यक्रम बना लिया और बोल दिया इसके बाद नहीं बोलेगा, इसके बाद तो एक भजन होता है और कोई कौन बोलता है, कोई भी श्रोता बोलता है, ऐसा सारे देश में नक्की है। क्यों तो जिसने शुरू कर दिया बस उसका हो जाएगा, जिसने नहीं किया उसका नहीं होगा, ऐसा होता क्या नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसी बंदूक की गोली ऐसे लगा के तैयार करके ऐसा रखे। और मैंने कभी कभी तो ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ी सांस ली तो उन्होंने भजन शुरू कर दिया। तो मैंने एक दिन उनको बुलाया कि तो बहुत प्रेम से कहा कि मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप भजन बोलना बंद करो, लेकिन आपके अच्छे नहीं लगते भजन, तुम्हारे भजन तो मुझे इतने अच्छे लगते हैं, इतने अध्यात्म से भरे हुए हैं कि तुम रात भर सुनाओ तो मैं गारंटी से नहीं सोऊंगा, तुम थक जाओगे लेकिन मैं नहीं थकूंगा सुनने से, इतने अच्छे भजन हैं बोलते हो बिल्कुल दौलत राम के, भूदर दास के, और मैं उसका जो बहुत बिना गाजे बाजे के और शांति से पंक्ति पंक्ति बोल के जो बोलते हैं तो समझ लो कि मैं तो उसका पागल हूं, मुझे इतने अच्छे लगते हैं, मुझे भजन बहुत अच्छे लगते हैं तुम्हारे, तो फिर मेरे को बोलने से मना क्यों करते हैं। इसलिए मना करते हो कि तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता है जो मैं समझाता हूं, क्यों कि तुम निरंतर उसको घोड़े पे कसे कर तैयार करके बैठे हो, और यदि तुम भजन नहीं छोड़ सकते हो तो ये छोड़ दो कि दूसरा बोलेगा तो बोल देगा, है ना, मुझे मिलेगा चांस तो मैं बोलूंगा, तो महीना में 15 दिन तो तब भी तुम्हें चांस मिलने वाला है, लेकिन तुम कम से कम प्रवचन सुनते वक्त ये बिल्कुल विकल्प मत रखो कि मुझे भजन बोलना है, तो तुम्हारे को बोलने की छूट है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं प्रवचन के पहले ऐसे पर्चा दे देते हैं कि साहब ये सूचना दे देना, बाद में ये दे देना, मुझे तुम्हें दे देना ना, उन्हें दे देना कि नहीं साहब आप दे देना, आप दे देना। मैं उनसे कहता हूं कि जब मेरा प्रवचन खत्म हो तब तुम मुझको कहना, अभी कह दिया ना तुम 1 घंटे तक, अब तुम्हारे ये बोझा माथे पर लेके नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं प्रवचन करूंगा और मैं अपना उपयोग उसमें लगाऊंगा और उसमें फिर ये याद रखूंगा इनकी सूचना देनी, तो मेरा प्रवचन खत्म हो जाएगा, मेरा कुछ जिम्मेवारी नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उसके बाद बोल दोगे कि नहीं बोल दोगे कोई गारंटी नहीं है, तुम याद दिलाना जब प्रवचन खत्म हो तुम याद दिलाना, होगा संभव तो बोल दूंगा, लेकिन अभी का कहा बिल्कुल काम नहीं आएगा, आगे पर्चा रख देता हूं कि नहीं, पर्चा को कौन याद रखेगा, पर्चा जेब में, जेब को कौन याद रखेगा। जैसे कई दफे ऐसा कहता आपने चिट्ठी दी आप दे देना जाकर उसको, महीना भर तक मेरी जेब में ही रखी रही बात, ये कौन याद दिलाएगा कि इस जेब में से लेकर के चिट्ठी उसको देनी है, जब उसके पास जाऊंगा तब चिट्ठी देना। मैं 8 दिन से रोजीना प्रतिज्ञा करके बैठा हूं कि आपको गुरुदेव का वो कोटेशन लाके सुनाऊंगा और आज तक नहीं ला पाया, कौन माथे पे बोझा रखे उसका। तुम छोड़ दो भजन बोलना, छोड़ दो, कहां उपयोग अटक जाता है, व्यवस्थापकों का व्यवस्था में उपयोग अटका रहता है, इसलिए उनकी समझ में नहीं आता, इसलिए कह रहा हूं। हालांकि ये मेरे कोई खतरा है, क्योंकि ये व्यवस्थापक व्यवस्था छोड़ देंगे तो क्या होगा। बड़ी मुश्किल से तो लाखों में एक व्यवस्थापक तैयार होता है, सच बोल तो बहुत मुश्किल काम है, है ना। ये संस्कृत में एक सूक्ति है, योज कहा तत्र दुर्लभा। अजित प्रसाद जी आप पैसा दे सकते हो, विमल जी भी पैसा दे सकते हैं, ये दौड़ धूप आदिश कर सकता है वो आप नहीं कर सकते, इसलिए हम पहला फोन आदिश को करते हैं, बाद में विमल जी को करेंगे, अजित जी को करेंगे, इसको कह देंगे तो विमल जी को तो कह ही देगा, वो अपनी जगह बहुत अलग बात है, वो बहुत दुर्लभ है, लेकिन उसको भी ये समझना पड़ेगा कि मैं अकेला कार्यकर्ता नहीं हूं। ये धर्म के क्षेत्र में अकेला कार्यकर्ता किसी को नहीं बनना, आत्मा का कल्याण प्रमुख है और उसके बाद में कार्यकर्ता हूं तो इसकी उपयोगिता है। 10 करोड़ का प्रोजेक्ट खड़ा हो जाएगा पर आत्मा समझ में नहीं आएगा तो वो कुछ काम नहीं आएगा। वहां नाम तो लिखा जाएगा लेकिन वहां वो काम नहीं आएगा, अगले भव में कुछ भी काम नहीं आएगा। जो आत्मा समझ में आएगा वो काम आएगा, ये समझ लेना। आत्मा को ऊर्ज रखना, नंबर वन पे रखना, थोड़ा कम बनेगा थोड़ा देर में बनेगा कोई चिंता की बात नहीं है। गुरुदेव श्री की एक प्रतिज्ञा थी आप मालूम, पंच कल्याण को जब कुछ हो उनका 2 टाइम प्रवचन, उसका टाइम नक्की, चर्चा का टाइम नक्की, और उसके में किसी की भी अनुपस्थिति उन्हें बर्दाश्त नहीं थी, ना सौधर्म इंद्र की, ना भगवान के माँ बाप की, क्यों ना किसी कार्यकर्ता की, ना अध्यक्ष की, ना मंत्री की, सब की सामने उपस्थिति चाहिए 5 मिनट पहले। नहीं होगा तो फिर उस पर ही पूरा व्याख्यान होगा, फिर समय सारी तरफ रखा रहेगा। ये हमने देखे क्या नहीं बालचंद जी, बोलो थारा जी आपने भी देखे होंगे ना। ऐसा नहीं है कि वो 8:15 का कभी सुबह 8:15 से 9:15 होता था तो 8:15 से 8:20 नहीं होने कभी किसी ने होने दिया, ओके 8:10 में शुरू कर देना वो नहीं चलेगा। वो वज्र की रेखा है, केवल ज्ञान में नोंद है, वो वृत्ति की अखंडता है, एक पर्याय को पलट के दूसरी जगह नहीं ली जा सकती है। तुम्हें और जो कुछ जब जैसा करना हो करते रहना, क्यों प्रदीप जी अरे छोटे छोकरों से क्या कहूं, इन्हें तो गुरुदेव को देखा ही नहीं है, उनके सामने पंच कल्याण की नहीं है, उनकी क्या बात करूं। अब वो ऐसे नाम लेने वाले मुश्किल से 2-4-5 दिखते हैं जिनको इस बात को देखा जा सकता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें इसके लिए हैं, ये उनके लिए नहीं है। पंच कल्याणक के लिए प्रवचन नहीं है, प्रवचन के लिए पंच कल्याणक है। मैं तो ये बोलता हूं कि पंच कल्याणक में जो देशनालब्धि का निमित्त है उसमें क्या चीज निमित्त होती होगी, जो भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है वो निमित्त होती है, पूरा पंच कल्याणक निमित्त नहीं होता। क्योंकि देशनालब्धि में तो वो बात निमित्त होगी ना, जो आत्मा क्या है ये समझाया। ऐरावत हाथी थोड़ी निमित्त होगा, हाथी तो हाथी दर्शन में निमित्त होगा, आत्मदर्शन में निमित्त थोड़ी होगा। क्यों ये सारा स्मारक काय के लिए है, इस प्रवचन के लिए है, ये स्मारक के लिए प्रवचन नहीं है, ये प्रवचन के लिए स्मारक है। क्यों देखो दो ही, ज्ञान और ध्यान और अध्ययन, ये दो ही चीजें मुख्य हैं। ख्याल में आए ना, ज्ञान ध्यान आता है तपोनी, ज्ञान माने स्वाध्याय और अध्ययन, ये दो चीजें मुख्य हैं, बाकी सब साधन हैं। और ये साधन ये नहीं है तो साधन काय के। पहले ऐसा होता था कि प्रवचन करना हो तो नाटक करके भीड़ इकट्ठी की जाती थी, और आज गुरुदेव के पुण्य प्रताप से आज उल्टा हो गया है, नाटक करना है तो पहले प्रवचन रख दो तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। माने पहले नाटक भीड़ के आकर्षण के कारण थे और आज प्रवचन भीड़ के आकर्षण के कारण बन गए, ये तो परम सौभाग्य है। लेकिन एक हर सौभाग्य के साथ एक दुर्भाग्य लगा होता है, और वो दुर्भाग्य क्या है कि पहले कम से कम साध तो प्रवचन था और नाटक को हम साधन के रूप में इकट्ठा कर लेते थे, अब तो नाटक साध हो गया और प्रवचन उसके लिए साधन हो गया। इंद्र सभा करनी है तो पहले प्रवचन रख दो नहीं तो भीड़ कैसे आएगी। और पंडित जी को प्रवचन जो भीड़ जोड़ने के लिए कर लिया और भीड़ जुड़ गई तो बस अब इंद्र नाचने लगे। अरे इंद्र सभा से भीड़ जोड़ो और फिर प्रवचन रखो, क्यों कभी कहेगी इंद्र सभा, अभी तो कोई है ही नहीं किसे दिखाएं। तो किसी यदि कोई नहीं है तो किसी को दिखाया नहीं जा सकता है, तो कोई नहीं है तो सुनाया कैसे जा सकता है। ये जो प्रवचनों में भीड़ इकट्ठी होने लग गई और नाटकों में नहीं होती है, ये तो गुरुदेव का पुण्य प्रताप है प्रदीप जी, और हम उसका साधन के रूप में उपयोग करना चाहते हैं अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए, ये हमारा दुर्भाग्य है। कितनी बढ़िया चीज हमें मिली और किसका कितना घटिया हमने उपयोग किया। इटली से मंगा करके वो क्या के बोलते हैं अपने घर में बिछा देते हैं नीचे कारपेट, क्या बोलते हैं हिंदी में, फर्श नहीं गलीचा, हाँ गलीचा, लाख रुपए का गलीचा आया इटली से लगाने के लिए, बैठक में लेके दरवाजे पर डाल दे, लोग आएंगे तो हाथ पहुंच पैर पहुंचने के काम आएगा। लाख रुपए के गलीचे को तूने दरवाजे में पैर पूछने के काम के लिए ले लिया, ये प्रवचन लाख रुपए का है, अरबों रुपए का है ना, और इसको हम भीड़ जोड़ने के काम में, वो दरवाजे के काम में लेना चाहते क्यों? ये तो सर्वाधिक उपस्थिति का कारण है और सर्वाधिक उपस्थिति में होना चाहिए किसी भी कार्यक्रम में हो। क्या क्या कह रहा भाग्य, ये तो हमारा भाग्य है कि सर्वाधिक उपस्थिति का कारण ये बन गया, हमें कोई दूसरे कारणों से भीड़ इकट्ठी नहीं करनी पड़ती है, प्रवचन की घोषणा ही पर्याप्त है। हमारे लिए दूसरे का उपयोग हो वो तो बहुत दूर रहा, तो हमारा उपयोग दूसरे के लिए करना चाहते, दूल्हे के लिए बरात है कि बरात के लिए दूल्हा, ये तत्व ज्ञान को मुख्यता देना आदिश जी, ये मेन है, इसके लिए सब कुछ है ना। तो ठीक है 19 आए तो ठीक है, 20 आए तो ठीक है, 21 आए तो सब चलेगा, लेकिन इसमें 19 नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, ऐसी तत्व ज्ञान की महिमा हमारे चित्त में आएगी तो ये दृष्टि का विषय भगवान आत्मा हमारे ख्याल में आएगा, अनंता नहीं आएगा।